ओम शांति। जो भी भाई बहने पीछे पीछे बैठे हैं वो आगे आके बैठ जाएं, आगे का स्थान भी आपके लिए ही है। हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसी महान विभूति जिनका जीवन दिव्यता, सादगी और निस्वार्थ सेवा का जीवंत उदाहरण है। हम सबकी प्यारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का हम इस सभा में बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपका जन्म 1958 में हरियाणा के भिवानी शहर में हुआ। बचपन से ही आप बहुत मेधावी छात्रा रही। आपने MSc BEd की पढ़ाई पूरी कर कुछ वर्षों तक मैथमेटिक्स के लेक्चरर के रूप में गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन जीवन का लक्ष्य केवल उतना ही नहीं था, क्योंकि वो लक्षण तो बचपन से नजर आते थे। आप बचपन से ही अपने दादाजी से भागवत और रामायण की कथाएं सुनती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी, अध्यात्म में रुचि भी थी, और मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही 1962 में आप अपने परिवार के सहित ज्ञान में आए, संस्था के संपर्क में आए, और 1963 में पहली बार दिल्ली में मेजर की कोठी में आपका साकार बाबा से मिलना हुआ। कहते हैं हीरे की असली परख तो जौहरी को ही होती है, और जब आप साकार बाबा से मिले तो बाबा ने आपके सिर पर हाथ रख आपको वरदान दिया कि ये बच्ची सेवा में महान योगदान देंगी। 1970 में आपका पहली बार मधुबन में आना हुआ, और अव्यक्त बाबा से जब आप मिले तो अव्यक्त बाबादा ने आपको वरदान दिया, बच्ची तुम सफलता का सितारा हो। और ये दोनों ही वरदान दीदी जी के जीवन से हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वर्तमान समय आप सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं, साथ साथ पंजाब जोन की ज्यूरिस्ट विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ साथ आप हांसी की सेवाएं भी संभालती हैं। आपकी वाणी में वो रूहानियत है जो अशांत मन को शीतलता प्रदान करती हैं। आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे। ज्ञान के दीप से जिन्होंने हर हृदय को जगाया है, प्रभु प्रेम का सच्चा मार्ग सबको आपने दिखाया है, तपस्या की शक्ति और सेवा का है संकल्प महान, नाम है लक्ष्मी और लक्ष्य है विश्व उत्थान। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी से ब्राह्मण जीवन में खुशनुमा और खुश नसीब जीवन। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलेंगे एक बार, ओम शांति। आज का विषय हम सभी बाबा के बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सदा स्मृति में रखने का और सदा ही उमंग उत्साह में रहने का। ब्राह्मण जीवन, खुशनुमा खुश नसीब जीवन, ये हमारा जो अलौकिक ब्राह्मण जीवन है, इसके लिए बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है कि बच्चे ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है, सबसे ऊंचा कुल, देव कुल से भी ऊंचा कुल है। इसीलिए ब्राह्मण की चोटी प्रसिद्ध है। विराट रूप में बाबा ने जो नया विराट रूप का चित्र बनवाया तो उसमें मस्तक में देवताएं, भुजाओं में क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन चोटी पर ब्राह्मणों को रखा। तो सचमुच में कितना महत्व है इस जीवन का, और किस लिए महत्व है, और उस महत्व को हमें सदा स्मृति में रखते हुए बहुत आनंदित रहना है। ये ब्राह्मण जीवन इसलिए महान है कि इस जीवन में बाबा हमें जो सिखाते हैं वो पूरे विश्व के लिए विधि विधान बन जाता है, हर कर्म का विधान बन जाता है। आप देखेंगे लौकिक दुनिया के अंदर कोई भी शुभ कार्य होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के मुख्य रूप से 16 संस्कार बताए जाते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। लेकिन हर संस्कार में ब्राह्मण की उपस्थिति आवश्यक होती है। उस समय वो जो कुछ उच्चारण करता है, जो शब्द, जो मंत्र, वो हर संस्कार के लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं। और बाबा कहते, बच्चे दुनिया में जो कुछ करते हैं तुम बच्चे, जो कुछ वो मनाते हैं तुम बच्चे, वो जीवन में करते हो। तो बाबा ने हमें ये सिखाया है कि संगम युग पर हर कर्म को विधि पूर्वक करना है, और वही पूरी दुनिया के लिए विधान बन जाएगा, मर्यादा बन जाएगा, नियम बन जाएगा। और सचमुच में हम देखते हैं कि जितने भी कार्य होते हैं दुनिया में, कुछ शुभ कार्य होते हैं मांगलिक, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मनुष्य दुखी होता है, लेकिन उस हर कार्य में ब्राह्मण का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम बाबा के बच्चे हर शुभ कार्य के लिए, सबकी दशाओं को उतारने के लिए वो जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। कोई ग्रहचारी आ जाती है ना किसी के ऊपर, तो भी कहते हैं भाई पंडित जी से उसका विधान पूछो, क्या हो सकता है। बाबा कहते, बच्चे दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उन सबकी भी ग्रहचारी उतारने के निमित्त आप बच्चे हो। तो हम सब मर्यादाओं को कायम करने वाले बाबा के संगम युगी सच्चे ब्राह्मण हैं, और हमारे ही इस महत्वपूर्ण जीवन के कारण दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि ब्राह्मण को बहुत महत्व दिया जाता है, वो उनके जीवन निर्वाह का साधन बन जाता है। चाहे जीवन कैसा भी हो लेकिन ब्राह्मण को सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो हमारे इस संगम युगी विशेष जीवन का, इस महत्वपूर्ण जीवन का ही वो यादगार है, और यही हमारा वो ब्राह्मण जीवन है जिसमें हम अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ कर्म का बीज बोते हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का भी समय होता है, यही जीवन होता है। इस जीवन की झलक हम देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर जन्म में दिखाई देगी। जो जीवन हम अभी बनाते हैं उसी की झलक पूरे कल्प के अंदर हर जन्म में दिखाई देती है। तो ऐसे इस ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझते हुए हम विचार करेंगे कि हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। जब से हमारा नया जन्म हुआ हम शूद्र नहीं, चोटी के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण के बाबा ने जो सही लक्षण बताए हैं वो थोड़ा सा हम अपने जीवन में झांक करके देखेंगे कि क्या सचमुच में ब्राह्मण जीवन के सब लक्षण मेरे जीवन में उतर रहे हैं, और कितनी परसेंटेज तक उतर रहे हैं, और मुझे एक पक्का और सच्चा ब्राह्मण जीवन अपना बनाना है। तो सबसे पहला जो लक्षण है श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का, सबसे मुख्य विशेषता जिसके कारण हम ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी बनते हैं, वो है पवित्रता। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन बाबा कहते ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप जैसा आचरण सुबह से लेकर के शाम तक हमारे जीवन के अंदर हो, सच्चे ब्रह्माचारी। उसमें पवित्रता तो मुख्य है ही, मन वचन कर्म की पवित्रता। ब्राह्मण माना ही पवित्र, और दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि ब्राह्मण का एक नियम होता है कि वो यज्ञोपवीत पहन करके रखता है, वो उसका एक लक्षण माना जाता है, वो पवित्रता से ही संबंधित होता है, हैं? सूत का धागा जो होता है। और पुराने जमाने में कुछ वर्षों पहले हर ब्राह्मण की ये पक्की मर्यादा होती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो उसका यज्ञोपवीत है उसको वो कभी नहीं छोड़ता था। जब उसका अंतिम संस्कार होगा तभी वो उसके अंदर ही जाएगा, तभी जलाया जाएगा, उससे पहले वो जीते जी नहीं उतारता था। और इसी का फायदा उठाते हुए मुस्लिम राज्य के अंदर ये प्रसिद्ध था कि औरंगजेब ने हिंदुओं को का जो उनका सूत्र था, जो उनका यज्ञोपवीत था, उसको उतारने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। और औरंगजेब के लिए प्रसिद्ध है कि जब तक वो उनका वो नहीं उतरवा देता था तो तब तक वो भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। काफी बड़ी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बताते हैं, कई तो ये कहते हैं सवा मन वो यज्ञोपवीत उतरवाता था और उसको खत्म करता था। जो तो उतार देते थे वो मुस्लिम बन जाते थे, जो नहीं उतारते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था। यानी इतनी पक्की वो मर्यादा थी ब्राह्मण की। और वो जो सूत्र है वो हमारी पवित्रता का ही एक चिन्ह है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपने पवित्रता के धर्म से, हमें अपने मन वचन कर्म की पवित्रता से कभी भी नीचे नहीं आना है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, तो पहला लक्षण। और उसके लिए बाबा सूक्ष्म पवित्रता भी हमें क्या सिखा रहे हैं कि बच्चे मन के अंदर किसी एक आत्मा के प्रति एक अशुद्ध नेगेटिव विचार अगर मन में चलता है तो वो भी अपवित्रता है। तो यहां तक हमें अपनी पवित्रता को मजबूत करना है, स्वपन तक भी, संकल्प तक भी, किसी के प्रति मन में थोड़ी सी भी दुर्भावना ना हो उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण। उसके साथ साथ सच्चे ब्राह्मण का अगर खुश नसीबी का अनुभव करना है जीवन में तो उसके लिए दूसरा मुख्य नियम है कि सच्चा ब्राह्मण माना जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जिसको हम अपने यज्ञ की भाषा में क्या कहते हैं, अमृत वेला। अमृत वेले उठ करके बहुत प्यार से बाबा के साथ मिलन मनाता है। केवल उठना ही काफी नहीं है लेकिन उठने के बाद विधि पूर्वक बहुत प्यार से सर्वशक्तिवान बाबा की उपस्थिति को महसूस करते हुए ये महसूस करता है कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं, जो प्रतिदिन उन शक्तियों से जीवन को भरपूर करता है और उस शक्ति के आधार पर अपनी दिनचर्या को चलाता है, उसको कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। तीसरा मुख्य लक्षण सच्चे ब्राह्मण का, जो दुनिया वाले ब्राह्मण है उससे भी हम कंपेयर करते चलेंगे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझते हैं, हम अमृत वेले बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। तीसरा लक्षण है पठन और पाठन। सच्चे ब्राह्मण का लक्षण है जो खुद भी अध्ययन करता है और अपने उस अध्ययन मनन चिंतन का फायदा दूसरों को भी देता है, समाज को भी देता है, पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। तो जो बाबा का बच्चा प्रतिदिन बहुत प्यार से विधि पूर्वक बाबा की मुरली सुनता है, उसका चिंतन करता है, वो है सच्चा ब्राह्मण। लेकिन इसके बीच में आजकल एक माया है। आजकल कहेंगे हम घर में ही मोबाइल पर मुरली सुन लेते हैं, लेकिन मुरली को विधि पूर्वक सुनना, विधि पूर्वक। एक छोटा सा उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि महाभारत के समय जब भगवान ने गीता सुनाई थी तो गीता का ज्ञान किसने सुना था, किसने सुना था? भगवान ने गीता सुनाई, किसने सुनी थी? अर्जुन ने। लेकिन केवल अर्जुन ने नहीं सुनी थी उस समय, और किसने सुनी थी? संजय ने सुनी थी। संजय ने भी सुनी थी ना, क्योंकि उसको धृतराष्ट्र को सुनानी थी। तो तीसरा, इसका मतलब धृतराष्ट्र ने सुनी थी। तो गीता तीन ने सुनी थी एट ए टाइम, अर्जुन ने भी सुनी, संजय ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी। लेकिन विधि पूर्वक किसने सुनी? संजय ने गीता सुनी सुनाने के लिए कि मुझे सारा समाचार धृतराष्ट्र को कन्वे करना है। और धृतराष्ट्र ने गीता किस लिए सुननी पड़ी उसको मजबूरी में? धृतराष्ट्र ने गीता सुनी इंक्वायरी के लिए कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। जब पता चला कि अर्जुन तो बिल्कुल जो है ना निराश हो चुका है, हथियार छोड़ दिए हैं, तो बड़ा खुश हो गया था कि चलो अब तो जीत हमारी पक्की है। लेकिन फिर वो इसलिए सुनना चाह रहा था कि कहीं भगवान उसे फिर से प्रेरित ना कर दे, उसे फिर से उत्तिष्ठ ना कर दे। तो बड़ा इंक्वायरी थी उसकी, क्या चल रहा है, केवल इंक्वायरी के लिए सुनी। और धृतराष्ट्र के अंदर गीता ज्ञान की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं उतरी। अंत तक उसके मन की स्थिति विचलित रही, भयभीत रहा। और संजय जो था वो केवल सुना और सुनाया तक सीमित रहा। लेकिन अर्जुन ने गीता कैसे सुनी? एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारता गया और अंत में 18वें अध्याय में कहा कि हे भगवान, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे मेरा सारा मोह, मेरी सारी अज्ञानता नष्ट हो गई है और मुझे सत्य की स्मृति आ गई है और अब मैं केवल वही करूंगा जो आप कहेंगे। और जैसी अर्जुन के जीवन में गीता उतरी, ऐसी दुनिया में किसी के अंदर नहीं उतरी। और वो अर्जुन कौन है, कौन है वो अर्जुन? जरा हाथ तो खड़े करो जो अर्जुन है। वाह, ताली बजाओ अपने लिए, हम सभी अर्जुन हैं, हैं? तो हमें प्रतिदिन गीता ज्ञान को जीवन में उतारना है, ऐसे गीता सुननी है, है ना। संजय ने और धृतराष्ट्र ने महल के अंदर सुनी और अर्जुन ने युद्ध भूमि के अंदर सुनी। तो हमें अपने कंफर्ट जोन में नहीं सुननी, घर बैठ गए, रजाई में बैठे हैं, बिस्तर में मोबाइल खोल लिया, हाँ जी आज की मुरली हमने पढ़ ली, नहीं। विधि पूर्वक जो बाबा के बनाए हुए निश्चित स्थान है वहां आकर के हम सुने, उस वातावरण में सुने। तो जो पठन करना है सच्चे ब्राह्मण को, अगर सच्चे हैं तो विधि पूर्वक सुननी है, अर्जुन की तरह सुननी है, हैं? बाबा के घर में आकर के गीता सुननी है। और केवल सुननी नहीं, उस पर चिंतन करना है, उसे जीवन में उतारना है और फिर उसका फायदा दूसरों को भी देना है। पठन और पाठन ये ब्राह्मण का लक्षण है। तो हम सभी सच्चे ब्राह्मण हैं, तो केवल गीता सुननी नहीं, उसका चिंतन करो, मनन करो, उस अमृत को जीवन में उतारें और फिर उस अमृत को सबको बांटें। ये है सच्चे ब्राह्मण का लक्षण। फिर एक लक्षण है कि सच्चा ब्राह्मण उसे कहेंगे जो रोज ब्रह्मा भोजन खाता है। अब सब अपने अंदर जरा झांक करके देख लेना कि रोज हम ब्रह्मा भोजन ही स्वीकार करते हैं। सेंटर पर तो कभी कभी मिलता है, लेकिन घर के अंदर भी जो भोजन बनता है ना, माताओं बहनों के हाथ में तो सारा होता है, तो इसलिए हम रोज ब्रह्मा भोजन बनाएं, रोज बाबा को भोग लगाएं और वो भोग लगा करके पूरे परिवार को खिलाएं, तो सच्चा ब्राह्मण माना ब्रह्मा भोजन स्वीकार करे। और भाई भी इसका विशेष ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा ऑफिस में है, क्या करें, बिजनेस है, चाय तो पीनी पड़ती है, थोड़ा सा तो ये बिस्कुट लेना पड़ता है, वो चीज लेनी पड़ती है। सच्चा ब्राह्मण माना वो केवल ब्रह्मा भोजन ही भगवान को भोग लगा के, चाहे आप वहां भी हैं तो भी आप फ्रूट भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, वो भी पहले बाबा को अर्पित करके उसे भोग लगा करके स्वीकार करेंगे, तो वो हमारे तन और मन दोनों को प्रफुल्लित करेगा। तो इसलिए इन सभी लक्षणों का हमें ध्यान रखना है। और सच्चा ब्राह्मण माना संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट, उसको चाहिए चाहिए नहीं होगी, बाबा मिला तो सब कुछ मिला, वो अंदर की प्राप्तियों से अपने आप को भरपूर करेगा, अंदर की प्राप्तियों से, भगवान मिला तो सब कुछ मिला। और सचमुच में बाबा जो ऐसा संकल्प लेकर के चलते हैं, उन्हें ये महसूस कराता है कि बच्चे कदम कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये ब्राह्मण जीवन खुश नसीबी का जीवन कैसे है, खुश नुमा जीवन कैसे है, इस जीवन के अंदर हम देखते हैं सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा का ये वायदा है कि बच्चे तुम मुझे अपना साथी बनाओ तो मैं हर कदम पर तुम्हें साथ देने के लिए, पालना देने के लिए, प्यार देने के लिए, शक्ति देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। हम कितने खुश नसीब हैं जो भगवान सुबह आंख खुलने से लेकर हमारी पालना करनी शुरू कर देता है। देखो दुनिया में तो केवल ये शब्द बोलते हैं कि भगवान पालनहार है, लेकिन सचमुच में वो पालना करता है और उसकी पालना को हम महसूस करते हैं। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा खुले भंडारे लेकर के बैठता है, आओ बच्चे जितना चाहो अपने आप को भरपूर कर लो। सुबह से बाबा की पालना शुरू हो जाती है। फिर देखो शिक्षक के रूप में कितनी ऊंची, सर्वोच्च ज्ञान, सत्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, हर रोज हमें बाबा शिक्षक बन के पढ़ाता है। किसी एक दिन की भी मुरली कभी मिस नहीं होती है, हर रोज। और फिर केवल इतना ही नहीं, बाबा कहते दिन भर में हर कर्म करते हुए बाबा की याद में करो, तो सचमुच ऐसा लगेगा कि बाबा साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। केवल प्यार से तुम उसे हैं, बाबा को साथ रखो। बाबा कहते तुम खुद ही मुझे छोड़ करके अकेले हो जाते हो, फिर माया चांस लेती है। हर घड़ी हर पल प्यारे बाबा की याद में भोजन बनाओ तो उसकी याद में, खिलाओ तो उसकी याद में, खाओ तो उसकी याद में, कहीं सफर पे जाओ तो बाबा मेरे साथ है। हर कर्म में उसे अपना साथी बना सकते हैं, उसका सहयोग ले सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है, दुनिया में आज कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना किसी स्वार्थ के सुबह से शाम तक आपके साथ रहे, आपके बोझ भी उठा ले, आपको हल्का भी कर दे, चाहे कितनी भी पेमेंट कर दो तो भी ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा कुछ नहीं लेता, वो केवल प्यार का भूखा है। प्यार से जो बच्चे उसे अपने साथ रखते हैं, उनका साथ निभाता है। सूरदास जी की एक छोटी सी बात याद आती है कि सूरदास जी जो अपना हाथ में उनके जो डंडा होता था जिसको लेके वो चलते थे, नेत्रहीन थे, तो उसको वो ऐसे नहीं रखते थे, ऐसे लंबा करके पकड़ते थे। तो किसी ने कहा, सूरदास जी इसको टिका टिका के चलो ना, ऐसे क्यों ले रखा है? कहते जैसे ही मैं चलना शुरू करता हूं तो वो मेरी लाठी का अगला सिरा पकड़ लेता है और कहता है, बोल सूरदास तुझे किधर चलना है। ये किसका यादगार है? ये हमारे बाबा का ही तो यादगार है कि तुम प्यार से मुझे याद करो तो मैं तो हर कदम तुम्हारे साथ साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो कितनी बड़ी खुश नसीबी है जो भगवान हर पल साथ देने को तैयार है, हर पल हमारे साथ चलने को तैयार है, हमारे सारे बोझ उठाने को तैयार है। इसलिए हम बहुत खुश नसीब हैं। उसके साथ साथ हमारी खुश नसीबी इसलिए भी है कि बाबा हमारा शिक्षक भी है और वो हमारा रक्षक भी है। अगर हमारा समर्पण भाव होता है बाबा के प्रति तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे हर पल चिंता रहती है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, इसको कहां कैसे बचाना है। अगर उसने भक्तों की रक्षा की तो क्या वो अपने बच्चों की नहीं करेगा? प्रहलाद के लिए दिखाते हैं, उसको पहाड़ से गिराया, उसको आग में जलाने की कोशिश की गई, उसने कभी भयभीत होके नहीं पुकारा, केवल दिल के अंदर श्री हरि श्री हरि, उस प्रभु पिता की याद थी। तो चिंता उसको होती थी कि इसको जब पहाड़ से गिराएंगे तो कैसे बचाऊंगा, इसको जब अग्नि में बिठाएंगे तो कैसे बचाऊंगा, चिंता उसको होती थी। अगर हमारा समर्पण भाव बाबा के प्रति पूरा होगा तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो हर कदम पे हमसे पहले ही सोच लेगा कि मेरे इस बच्चे को किस समय किस चीज की जरूरत है। और ये दिल के अनुभव हैं। और इतनी साधारण भूली भाली माताएं, जिनको गोपिकाएं कहेंगे, गांव गांव की माताएं आके सुनाती हैं कि कैसे बाबा ने मेरे सारे बोझ उठा लिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर समस्या का समाधान वो देता है। तो हम खुश नसीब हैं या नहीं है जिसके सारे बोझ उठाने के लिए वो तैयार है। उसके साथ साथ हमारी खुश नसीबी का कारण ये भी है कि ये संगम युग हर दिन हमारी चढ़ती कला है। हर दिन हर पल हमारे लिए कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी चढ़ती कला का समय है। अगर कुछ ऐसा भी जीवन में हो गया जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारी हमें लगता है कि ये तो प्रतिकूल है, मेरी सोच के उलट है, ये कुछ ऐसा भी हो गया, कुछ नुकसान भी हो गया, तो भी बाबा कहते बच्चे नुकसान के पर्दे के पीछे कोई ना कोई फायदा छिपा हुआ है। वो आज दिखाई नहीं दे रहा लेकिन थोड़े समय के बाद हम महसूस करेंगे कि उस नुकसान में भी कोई ना कोई मेरा हित छिपा हुआ था। ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण है। इसलिए अब हमारी चढ़ती कला है, अब हमें कोई भी ऊपर चढ़ने से रोक नहीं सकता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, वो जंगल में जा रहे थे, गर्मी का समय था, बहुत प्यास लगी, पसीना आया, तो पानी की इधर उधर तलाश कर रहे थे, तो कहीं दिखाई नहीं दिया। एक गडरिया था जंगल के अंदर, तो उससे उसने पूछा कि तुम्हारे पास थोड़ा जल मिल जाएगा? उसने कहा हाँ महाराज। उनको पानी पिला दिया और महात्मा जी तृप्त हुए पानी पीकर, और चलते चलते उस गडरिये को एक छोटी सी पुड़िया दे दी, उसमें कुछ ऐसी राख थी, कहा कभी बीमार हो जाओ तो ये ले लेना और आज से तुम्हारे दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। चढ़ती कला, खुश हो गए ना महात्मा जी, तो उसको वरदान दे गए। अब वो बेचारा अनपढ़ था, भोला भाला था, वो पुड़िया जाके घर में रख दी और दिन अच्छे हो जाएंगे उसको कुछ खास समझ में नहीं आया। एक दिन उसकी जो धर्मपत्नी थी वो बीमार हो गई, तो उसने कहा कि उसने सोचा कि महात्मा जी ने कहा था अगर कोई बीमार हो जाए तो ये दवा दे देना ये पुड़िया में से, तो उसने थोड़ी सी वो चुटकी राख की उसको दे दी और वो ठीक हो गई। फिर कुछ दिन के बाद अड़ोस पड़ोस में जो भी बीमार होता था तो कहते थे उनके घर से चुटकी ले आओ, उससे ठीक हो जाएंगे। वो भी ठीक हो गई। थोड़े टाइम के बाद उस एरिया का जो मुखिया था, सरपंच था, वो बीमार हुआ, उसको भी दी। फिर उस काफी बड़े एरिया का जो राजा था वो एक बार बीमार हो गया, तो किसी ने सुनते सुनते कहते ना भी फलानी जगह पर वो है, उसके पास जाओ तो ठीक हो जाएंगे। तो वो महाराजा के बड़े इलाज हुए, बड़े वैद आए, कुछ नहीं हुआ। आखिर उसी गडरिये से वो चुटकी राख की लेके आए और राजा को दी, वो ठीक हो गया। तो राजा ने सोचा कि इसने मेरी जान बचाई है, तो इस व्यक्ति को कल राज दरबार में सम्मानित करेंगे। तो उस गडरिये को बुलाया। अब वो बेचारा भोला भाला अनपढ़, उसको पता ही नहीं था सम्मान क्या होता है, उसको बुलाया और उसे जो है ना सम्मानित किया गया। और राजा ने सम्मानित करके कहा कि आज से तुम इस राज्य के राज वैद हो, राज वैद। अब वो बेचारा भोला भाला अनपढ़, तो वो जो दूसरे वैद थे उनको ईर्ष्या हो गई कि ये कल का अनपढ़ मूर्ख इसको राज वैद बना दिया तो हमारे को कौन पूछेगा। तो उन्होंने सोचा कुछ किया जाए, तो उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि जो है ना तुमने राजा की जान बचाई और राजा ने तुम्हें राज वैद की उपाधि दी है, तो कुछ नहीं होती है, राजा को तो तुम्हें अपना राज्य ही दे देना चाहिए था, तो तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए। कहता अच्छा। अब वो बेचारा भोला भाला अनपढ़, उसने कहा ठीक है बताओ क्या करूं। कहते हैं कल जब राजा का दरबार लगेगा तुम दरबार में जाना और जाकर के राजा का कान पकड़ के खींच के ले जाना उसको बाहर तक, वहां से उठा के। कहता अच्छा इतना तो काम मैं कर लूंगा। तो उसने जैसे ही दरबार लगा उठ के गया, तो वो जो है ना राजा का कान पकड़ के और लेकर के गया, खींच खींच के ले जाने लगा। तो वो जो उसके सिपाही थे, कर्मचारी थे, वो दौड़े कि राजा का तो अपमान कर रहा है, नहीं सॉरी अभी कान नहीं पकड़ा था, उसने कहा कल जाके राजा की पगड़ी उछाल देना। तो उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो गया पगड़ी उछाली, तो सिपाही उसको पकड़ने दौड़े, तो जो है ना इतने में एक सिपाही राजा का वो मुकुट उठा के ले आया पगड़ी, तो उसमें देखा काला बिच्छू था। तो जो है राजा ने कहा ठहरो ठहरो, ये बड़ा समझदार व्यक्ति है, देखो इसने दूसरी बार फिर मेरी जान बचा दी, तो इसलिए आज से मैं आधा राज्य इसको देता हूं। राजवैद तो हो ही गया था, आधा राज्य। अब वो फिर सारे के सारे फिर ईर्ष्यालु, फिर बुलाया उसको, कहा तूने दो बार राजा की जान बचाई, राजा को तो पूरा राज्य देना चाहिए था, उसने आधा ही दिया। तो उसने कहा अब क्या करूं। कहता तू कल फिर जा और अब जाके राजा का कान पकड़ के खींच के ले जाना उसको। कहता ठीक है। उसने जाके वही किया, फिर सिपाही पकड़ने को दौड़े, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो। तो जैसे ही वो खींच के वहां तक लेके गया, इतने में राजा के सिर पे जो बड़ा भारी झूमर था वो नीचे गिर गया, वो जहां बैठता था ना उस सिंहासन पे गिर गया। तो राजा ने कहा, देखो इसने तीसरी बार फिर मेरी जान बचाई है, अब तो मैं पूरा ही राज्य है। अब विचार कीजिए ये सब कुछ कैसे हुआ। उसने एक काम दुआ का किया था, जल पिलाया था, और उस महात्मा जी ने प्रसन्न होके उसको वरदान दिया था कि आज से तेरे दिन बहुत अच्छे होंगे, तेरी चढ़ती कला होगी। हमें ये वरदान किसने दिया है? किसने? किसी महात्मा ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, हमें किसने दिया है कि बच्चे तुम्हारी अब चढ़ती कला है? किसने दिया है? बाबा ने दिया है, सर्वशक्तिवान ने दिया है। तो हमारा ये वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता। कभी कभी देखने में तो ऐसा दिखाई देगा कि ये नुकसान हो गया, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई फायदा छिपा हुआ है। तो खुश नसीब कौन, बताओ जरा, कौन खुश नसीब? जिनकी चढ़ती कला है, जिनकी खुद भगवान पालना करता है, जिनको हर पल वो साथ देने के लिए बंधा हुआ है। तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन बहुत खुशनुमा जीवन है। लेकिन जितनी जीवन में प्राप्ति ऊंची होती है, उतना कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। जैसे कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो कहते हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। तो इसलिए जितनी हमारी ऊंची जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन, जितना हमारा भाग्य ऊंचा है, उतना ही अगर हम कहीं गफलत करते हैं, कहीं असावधानी करते हैं, तो हमारा नुकसान भी बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं अगर फायदा 100 गुना है, तो जो घाटा है वो भी उसी अनुपात में होगा ना, वो भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कदम कदम पे सावधानी रखो कि इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हमसे कोई ऐसा गलत काम ना हो। दुनिया वालों की सजा थोड़ी होगी, हमारी सजा ज्यादा होगी। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है इस पर। एक बार महाभारत के समय जब ये निश्चित करना था कि युवराज दुर्योधन को बनाया जाए या युधिष्ठिर को बनाया जाए, तो उस दिन दरबार के अंदर एक ऐसा केस आया न्याय करने के लिए कि जिसमें 4 व्यक्तियों ने मिलकर कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, ऐसा अपराध जिसके लिए मृत्यु दंड तक मिल सकता है, ऐसा अपराध किया था। तो उन 4 के लिए निर्णय देना था कि इनको क्या सजा दी जाए। तो पहले दुर्योधन से पूछा गया कि ये 4 व्यक्ति आए हैं अपराध करके, और वो अपराध बताया गया, तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, महाराज इन सब का सिर काट दिया जाए, मृत्यु दंड। फिर उसके बाद उससे पूछा गया, युधिष्ठिर से, कि अब तुम बताओ कि ये 4 व्यक्तियों ने मिलकर के अपराध किया है, इनकी क्या सजा होनी चाहिए। तो पहले युधिष्ठिर ने 4 का परिचय पूछा, तो उसमें से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था और एक शूद्र था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज जो शूद्र है उसको 50 कोड़े लगाए जाएं, जो वैश्य है उसकी सजा शूद्र से डबल, जो क्षत्रिय है उसकी सजा शूद्र से 3 गुना, और जो ब्राह्मण है उसकी सजा शूद्र से 4 गुना। तो पूछा, आप बताओ ये किस लिए? कहा कि देखो शूद्र तो है ही शूद्र बेचारा, वो अनजान है, वो अज्ञानी है, अज्ञानता के कारण उसने अपराध किया है। लेकिन वैश्य की सजा डबल क्यों? क्योंकि वैश्य जो है वो समाज का पोषण करने वाला है ना कुछ समाज को सहयोग देने वाला है, और वो पढ़ा लिखा भी है, तो उसकी सजा डबल। और फिर जो क्षत्रिय है उसकी सजा 3 गुना, क्योंकि क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, लेकिन उसने रक्षा की बजाय वो भक्षक बना, तो उसकी सजा 3 गुना, लेकिन ब्राह्मण की सजा 4 गुना, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो जानकार है, उसे पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसे पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, और फिर भी उसने पाप किया। तो ये सावधानी किसके लिए है, किसके लिए है? हम सब सच्चे ब्राह्मण हैं, तो हमें बहुत जागरूक रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। हमारी छोटी सी भी गफलत हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती। उसके साथ साथ हम सभी सच्चे ब्राह्मण हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख करके सब करेंगे। मैं स्टेज पर हूं, जैसे बाबा कई बार कहते ना, बच्चे हमेशा ये समझो कि मैं स्टेज पर हूं, मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन को देखने वाले हजारों हैं, मैं सबके लिए सैंपल हूं, मैं सबके लिए एग्जाम्पल हूं। जैसे सैंपल होता है ना, कोई बिजनेस करता है तो सैंपल थोड़ा सा होता है, कपड़े का सैंपल छोटा सा पीस भेजेगा, लेकिन करोड़ों का सौदा सेटल हो जाएगा। गेहूं का, चने का थोड़ा सा सैंपल भेजा जाएगा, लेकिन लाखों करोड़ों का जो सौदा है वो फाइनल हो जाएगा। तो अगर सैंपल परफेक्ट है तो सौदा भी जल्दी हो जाएगा, अगर सैंपल डिफेक्टेड होगा तो करोड़ों का सौदा कैंसिल भी हो जाएगा। तो हम सभी बाबा के सच्चे ब्राह्मण कौन हैं? हम सभी सैंपल हैं, दुनिया के सामने सैंपल हैं। एक एक का जो जीवन है ना, घर वाले देखते हैं, पड़ोस वाले देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं, ये ओम शांति वाले हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं। अगर छोटी सी भी कमी होती है तो समझो वो सैंपल की कमी है, और वो कितनों का सौदा कैंसिल करा देगी कि अगर इनके जीवन में ही बदलाव नहीं आया तो हमारे जीवन में क्या आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका जीवन अच्छा है, परफेक्ट है, तो आप अपने ऑफिस के अंदर एक सैंपल हैं, कितने लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। एक एक माता, एक एक बहन अपने घर के अंदर अगर वो शांति का व्यवहार करती है, प्रेम का व्यवहार करती है, तो अड़ोस पड़ोस वालों को, मित्र संबंधियों को भी इच्छा होती है हम भी जाकर के देखें कि वहां क्या होता है। यानी वो सौदा कराने के निमित्त बन जाती हैं। और जब हमें देख करके कोई सौदा कर लेता है भगवान के साथ, तो उसका शेयर हमें भी मिलता है। लेकिन हमारी गलत किसी भी आदत को देखकर किसी ने सौदा कैंसिल किया तो हमारे खाते से भी माइनस हो जाएगा। इसलिए हम सभी को ये विशेष ध्यान रखना है कि मैं बाबा के कार्य का सैंपल हूं, मैं एग्जाम्पल हूं, इसलिए मुझे अपने जीवन को, और कुछ करो ना करो, केवल अपने व्यवहार को, अपने बोल को, अपने कर्म को हम सही कर लें, तो हमारे द्वारा अनेकों की सेवा अपने आप हो जाएगी। आप सैकड़ों को ज्ञान सुना दो, लेकिन अपने जीवन की धारणा ठीक नहीं है तो हम किसी का सौदा नहीं करा सकेंगे। इसलिए हमें ये कुछ सावधानियां, क्योंकि जितना जीवन महत्वपूर्ण होता है उतनी उसके अंदर सावधानी भी बहुत जरूरी है। और हमारा ये खुशनुमा जीवन हमारे बहुत बड़े खुश नसीब का कारण है, खुश नसीबी। हमारा नसीब इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सारे खजाने दिए हैं, अथाह खजाने। हम सब अव्यक्त मुरलियों में सुनते हैं अक्सर, कुछ कुछ दिन के बाद बाबा हमें स्मृति दिला देते हैं कि मैंने सब बच्चों को समान रूप से खजाने दे दिए हैं, लेकिन कौन कितना उन खजानों को धारण करता है और कितना उन खजानों को बढ़ाता है, उसके अनुसार उनका भाग्य बनता है। तो कभी कभी हमें ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, भगवान ने हमें कौन कौन से खजाने दे रखे हैं। खजानों को जरा खोल खोल के देखो, कौन कौन से खजाने दिए हैं बाबा ने हमें। देखो, तीन तीन के सेट बाबा ने एक बार बताए थे ताकि याद रखने में आसान रहे, ज्ञान, गुण, शक्तियां। तीन खजाने कौन से हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां। फिर दूसरे तीन खजाने हैं तन, मन, धन। हम अपने इस तन को भी सेवा में लगा के और उससे भी कितना खजाना प्राप्त कर सकते हैं। मन के एक एक संकल्प से भी कर सकते हैं। धन को भी विनाशी से अविनाशी बना सकते हैं। तो तन, मन, धन। फिर तीन खजाने हैं समय, श्वास, संकल्प। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हैं। तो नौ खजाने तो ये हो गए। उसके अलावा बाबा कहते बच्चे खजाने जमा करने का भी, अभी पिछले हफ्ते ही बाबा की मुरली आई, सहज रूप से खजाने जमा करने के लिए चलो कुछ भी मत करो, एक काम करो कि सुबह से शाम तक सबकी दुआएं लेनी है और सबको दुआएं देनी है। और दुआओं का जो खजाना होता है, जो धन होता है, वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा धन दुआओं का धन है। खुशी का खजाना कितना बड़ा खजाना है, जिसको मनुष्य कहीं से खरीद नहीं सकता है दुनिया में, लेकिन बाबा के बच्चों के पास वो अपार खुशी का खजाना है। और जिसके पास इतने खजाने हों तो वो खुश नसीब नहीं होगा तो कौन होगा? होगा कोई? तो हम सभी कौन हैं? खुश नसीब हैं। अब बजाओ जरा ताली, बहुत खुश नसीब, खुशनुमा, क्योंकि दुनिया में इतने खजाने किसी के भी पास नहीं है और बाबा ने हमें वो भर भर के दिए हुए हैं। हम केवल उनको स्मृति में लाएं, रोज स्मृति में। देखो कई बार माताओं के पास वो अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी या जो धन संपत्ति, बार बार खोल खोल के देखेंगे बैंक की कॉपी कितना जमा हो गया और कितनी ज्वेलरी। उसको खोलने से, देखने से खुशी होती है। हम अपने अंदर के खजानों को रोज खोल खोल कर देखें कि हमें बाबा ने कितने खजाने दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सारे खजानों की चाबी है वो भी हमारे पास है। कौन सी है सारे खजानों की चाबी? स्वयं बाबा है, भाग्य विधाता है। सारी दुनिया जिससे भाग्य की भीख मांगती है, वो भाग्य विधाता मेरा क्या लगता है? वो मेरा, मेरा बाबा है, वो मेरा बाप है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता संगम युग पर मेरा है। इसलिए ये ब्राह्मण जीवन, इसीलिए देवी देवताओं के जीवन से भी बहुत महान है, क्योंकि वहां हम देवताओं की गोद में खेलेंगे, वहां हम रतन जड़ी झूलों में झूलेंगे और यहाँ रोज भगवान की गोदी का झूला है। भगवान का दिल तख्त है हमारे लिए, बस उस पे बैठने की कोशिश करें। तो इसलिए ये खुश नसीबी को हम बार 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 स्मृति में लाएंगे। अपने खजानों को रोज खोल कर देखो, मेरे को भगवान ने क्या क्या दिया हुआ है, उसका चिंतन करो, उसका स्मरण करो, बार बार उसको स्मृति में लाओ। स्मृति में लाते ही शक्ति मिलेगी, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी मन की स्थिति और वैसी ही शक्ति आत्मा को मिलती है। तो इसलिए बार बार अपने खजानों को स्मृति में लाओ। और एक खुश नसीबी की बात ये है कि बाबा ने जो भाग्य लिखने की कलम है वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? वो कलम भी किसी और को नहीं दे रखी, बाबा ने वो कलम भी हमें दे रखी है। कोई आपको खाली चेक दे दे और ये कह दे लिख ले जितना लिखना है तो कमी छोड़ेंगे? अब बाबा ने भी ये कह रखा है, बच्चे तुम जितना चाहो अपना भाग्य की लकीर को लंबा खींच लो, और वो लकीर को खींचने की कलम हमारे हाथ में है, लेकिन ये कलम चलेगी कैसे? एक छोटी सी बात सुना के मैं पूरा करूंगी, क्योंकि समय भी पूरा हो जाएगा। कहते एक व्यक्ति जो था वो जीवन भर बहुत दुखी रहा। बचपन में माता पिता चले गए, फिर थोड़ा बड़ा हुआ है ना, फिर कुछ पढ़ाई नहीं कर सका, मजदूरी की, फिर जैसे तैसे शादी हुई तो एक बच्चा हुआ, बच्चा भी चला गया, पत्नी, मतलब जीवन भर वो रोता रहा। जब उसका शरीर छूटा तो कहते ऊपर गया, ऊपर गया तो भगवान से बड़ी शिकायत की कि तूने मेरा भाग्य खराब क्यों लिखा, मैं जीवन भर रोता ही रहा। तो भगवान ने कहा कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, ब्रह्मा जी के पास जाओ तुम। कहते ना ब्रह्मा जी लेख लिखते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गया, फिर अपना सारा रोना धोना सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं करता इसमें, लेख जो लिखे जाते हैं वो लेखनी लिखती है, तुम लेखनी के पास जाओ। फिर वो लेखनी के पास गया, है ना, लेखनी के पास गया और उसको सारी व्यथा सुनाई अपनी। तो उसने कहा कि देखो मैं अपने आप कुछ नहीं लिखती हूं, लेखनी माना कलम, भाग्य को लिखने वाली कलम। तो उसने कहा मुझे चलाते हैं इंसान के कर्म, जैसा जैसा वो करता है मैं लिखती जाती हूं। तब उसको समझ में आया कि ये दोस्त तो किसी का भी नहीं है, ये तो मेरे अपने ही कर्मों का है, और वो जो लेखनी है वो बाबा ने हमारे हाथ में दे रखी है, और हमें वो कर्म सिखा रखे हैं कि बच्चे कौन से कर्मों से तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, कौन से कर्म करो ऐसे जो तुम अपना जितना चाहो भाग्य बनाओ, जितना चाहो दुआएं ले सकते हो, जितना चाहो अपने भाग्य की लकीर को लंबा खींच सकते हो। तो इस ब्राह्मण जीवन को साधारण बात नहीं समझना। जिसने बाबा को पहचान लिया और जो बाबा के बच्चे बन गए, जिसने नया जन्म ले लिया भगवान की गोद में, अब हम सच्चे ब्राह्मण बन गए, तो ये ब्राह्मण जीवन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा उपहार है ये जीवन। तो इसको साधारण रूप से नहीं गुजारना कि भाई चलो हम ब्राह्मण बन गए, सुबह मुरली सुन ली, थोड़ी जितनी हो सकी सेवा कर ली और काम पूरा हो गया। इस ब्राह्मण जीवन में हम 5000 वर्ष की पूरी प्राप्ति जो है वो हमारी इस समय लिखी जाती है। सतयुग त्रेता में तो भरपूर होती है, लेकिन उसके बाद के जन्मों में भी इस जीवन का प्रभाव चलता रहता है। इसलिए बहुत अलर्ट होकर के, बहुत सावधान होकर के हमें अपने जीवन के एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू समझनी है और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सफल करना है। और जितना हम इस समय अपने तन मन धन समय श्वास इन खजानों को स्मृति में लाओ, काम में लाओ इनको, तो ये बढ़ते जाएंगे। नहीं तो दबे दबे खजाने जो हैं वो वैसे ही निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हम बड़े खुश नसीब हैं। रोज सुबह सुबह उठते ही अपने आप को ये याद दिलाना है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं। जितना ये संकल्प बार बार करेंगे, हमारा जो नसीब है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि जो हम एक एक संकल्प रचते हैं वो संकल्प इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है चारों तरफ, और वो फिर प्रतिक्रिया होकर के फिर हमारे पास अनेक गुणा होकर के लौटता है। जब हम एक एक संकल्प करेंगे कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, तो नसीब हमारा बढ़ता ही जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। और उसके अपोजिट हमें कभी नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि हम तो सच्चे ब्राह्मण, भगवान की गोद के बच्चे, उसके वरदानों में पलने वाले हैं। इसलिए सदा खुश रहना है, सबको खुशी बांटनी है, और अपनी खुश नसीबी के नशे को हमेशा कायम रखना है। ओम शांति।